जैसे ही आस्तिक की नींद खुली वो कसमसा कर उठा, लेकिन अपने शरीर पर एक भार होने की वजह से वो ठीक से उठ नहीं पाया। आस्तिक अपनी आंखें मलते हुए उन्हें खोलकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अरुणिमा उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। आस्तिक ये देखकर चौंक गया। अरुणिमा उसके पास क्या कर रही है और वो उसके ऊपर क्यों सो रही है? आस्तिक का एक मन किया कि अरुणिमा को लात मारकर नीचे जमीन पर गिरा दे, और वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो अपने कमरे में है। आस्तिक हैरानी से अपने कमरे को देख रहा था। वो यहाँ कब आया? कल रात उसने जो भी किया उसके बाद वो सीधे क्लब गया था, और वहाँ उसने बेतहाशा ड्रिंक कर ली थी, इतना कि वो संभल भी नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने गाड़ी कब चलाई? क्या वो खुद ड्राइव करके आया था या उसे ड्राइवर लेकर आया था? वो कमरे में कब आया? अरुणिमा उसके साथ क्या कर रही है? आस्तिक इन सारे सवालों से परेशान हो गया था। उसका सर वैसे भी हैंगओवर की वजह से दर्द कर रहा था, ऊपर से उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, ये अलग परेशानी थी। तभी कुछ सोचते हुए आस्तिक का पूरा चेहरा डर से भर गया। उसने अरुणिमा को देखते हुए अपने मन में कहा, कल रात नशे की हालत में मैंने इसे कुछ कह तो नहीं दिया? कल रात वैसे भी मैं उन सबकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नशे की हालत में मैंने इसे सब कुछ बता दिया हो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आस्तिक की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ जाती है, जिसमें 9 बजने वाले थे। आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। 10 बजे तक तो उसे कहीं पहुंचना था। यही सोचते हुए वो हड़बड़ाते हुए उठा, लेकिन अरुणिमा उसके सीने पर अपने सर को रगड़ते हुए दोबारा सो गई। अरुणिमा को ऐसा सोता देख आस्तिक उसे धीरे से करवट देकर बिस्तर पर लेटा दिया और उसे आराम से सुला दिया। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, बस वो इस समय अरुणिमा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। आस्तिक जल्दी से बिस्तर से उठा। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे और न ही वो फ्रेश हुआ था। वो उसी हालत में अपने कमरे से निकला। आस्तिक जैसे ही हॉल में आया, सब लोग उसका नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आस्तिक चलता हुआ ही सबको देखता है और कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग नाश्ता कर लो। उसके बाद आस्तिक अचानक से रुका और अमृता ताई को देखते हुए कहा, अरुणिमा ऊपर सो रही है, जब उठे तो उसे कुछ खिला देना। और उसके बाद आस्तिक सीधा बाहर चला गया। सब लोग उसे इस तरीके से देखकर हैरान थे। आस्तिक के बाल पूरे अस्त व्यस्त हो रखे थे और यहाँ तक कि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो घर से चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आस्तिक इस बदहवासी की हालत में घर से निकला है, वरना वो हमेशा खुद को पूरी तरह से तैयार करके ही निकलता था। बाल और दाढ़ी उसकी हमेशा सेट रहती थी, कपड़ों पर एक भी सिलवट नहीं, यहाँ तक कि उसके कोट के कफ बटन तक सलीके से लगाए जाते थे। हाथों में महंगी वॉच और गले में गोल्ड की चेन। उसकी परफ्यूम की खुशबू ही इतनी शानदार रहती थी कि दूर से पता चल जाता था कि ये कोई खास शख्स है। ऐसी है आस्तिक की पर्सनालिटी, लेकिन आज वो अपनी पर्सनालिटी से विपरीत नजर आ रहा था। आस्तिक जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। उसकी नजर बार बार घड़ी पर ही जा रही थी। आस्तिक की गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी और वो जल्दी से होटल के अंदर चला गया। सब लोग आस्तिक को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसे कौन नहीं जानता है, यहाँ के राजा साहब हैं। आस्तिक सीधे लिफ्ट में गया और वहाँ से वीआईपी फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट वीआईपी फ्लोर पर रुकी, आस्तिक दौड़ता हुआ एक कमरे के सामने गया और उसकी घंटी को जोर से बजाने लगा। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आ रही हूँ आ रही हूँ, रुक जाओ, चल कर आऊंगी, ओढ़ कर नहीं। दरवाजा खुला और आस्तिक सामने देखा। सामने खड़ी औरत जब आस्तिक को देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन आस्तिक की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो औरत थोड़ी उम्रदराज थी, एक सफ़ेद कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा बना रखी थी और वहाँ पर कुछ सफ़ेद बाल जो उम्र की वजह से आ गए थे। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, लेकिन फिर भी चमक बरकरार थी। आस्तिक उस औरत को देखते हुए हताशा के साथ कहा, कल्पना आंटी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई और वो आस्तिक को देखकर बोली, तुम सीमा के बेटे हो ना? आस्तिक अपना सर हाँ में हिलाया तो कल्पना जी के चेहरे की मुस्कान और खिल गई। वो दरवाजे से हटी और आस्तिक को अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। आस्तिक अंदर आया। कल्पना जी आस्तिक को देखकर बोली, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम सीमा के ही बेटे हो सकती हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सीमा की जैसी हैं। आस्तिक बस कल्पना जी को देख रहा था। कल्पना जी ने आगे कहा, मैंने सुना है तुम इस रियासत के राजा हो, सच में सीमा अगर आज होती तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। लेकिन तभी आस्तिक ने कहा, मैं यहाँ पर अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मेरी माँ के बारे में जानने आया हूँ, क्या आपको पता है उस रात हुआ क्या था? अचानक से कल्पना जी की आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने कहा, उस मनहूस रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और काली रात थी। मैं और सीमा, हम दोनों एक ही क्लब में बार डांसर थी, मुझे मेरे बीमार पति के लिए पैसों की जरूरत थी और सीमा को अपने बच्चों की परवरिश के लिए, पर ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जो बेसहारा औरतों को बिना किसी मतलब के काम दे दे। एक औरत काम करने घर से बाहर निकलती है तो तनख्वाह देने वाला हर आदमी जैसे उसे अपने बाप का माल समझता है। अपनी जरूरत और मजबूरी के हाथों हम दोनों ने अपने जमीर को मार दिया और एक बार में डांस करने लगे, लेकिन हम दोनों सिर्फ वहां पर डांस किया
करती थी। इसके अलावा हमारा किसी दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं था। बार में कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो डांस करने के साथ जिस्म फरोशी का भी काम करती थीं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। दाल रोटी लायक हम कमा लेते थे और इससे ज्यादा कि हम दोनों ने कभी चाहत भी नहीं की। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। हर रात की तरह हम दोनों बार में डांस कर रही थी, तभी दरवाजा खुला और वहां पर दो तीन लोग आ गए। वैसे तो उस बार में आदमियों का आना बहुत ही आम बात थी। सीमा उन आदमियों को देखकर डर गई थी और उनमें से एक आदमी जो उस बार में हर जगह ऐसी नजर दौड़ा रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, जब सीमा ने उसे देखा तो वो डर से कांप गई और जल्दी से स्टेज छोड़कर ग्रीन रूम में जाकर छुप गई।